बहुत ही मुतासर हुआ, मुझे कार्ड दे दिया स्पेशल कि आप जब भी चाहे ये लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर। इब्ने सीना 18 वर्ष की उम्र तमाम उलूम हासिल कर चुके थे, 21 वर्ष में अपनी पहली किताब लिखी है और किताब नजात जो उन्होंने लिखी किताब वो फिफा का एक हिस्सा है, उसमें उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत, पैगंबर की नबुवत, इबादत की इबादत का फलसफा, रोजे का फलसफा, हज का फलसफा, रूह का फलसफा, जन्नत और दोजख और बाद का फलसफा, इन तमाम चीज़ों पर बड़ी ज़बरदस्त तस्नीफ की है। किताब नजात बड़ी मशहूर किताब है, इसका अंग्रेजी में ए जे आर्बेरी ने तर्जुमा किया है, बहुत अच्छा तर्जुमा है। मैं आप लोगों का जहर उस पर मंजूर करने की कोशिश करूँगा कि ये किताब शायद आपकी लाइब्रेरी में होगी। तर्जुमा आर्बेरी का बहुत अच्छा तर्जुमा है और उस तर्जुमे के आखिर में आर्बेरी ने कसीदा कहनिया का तर्जुमा भी पेश किया जी, जब शाया हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपकी लाइब्रेरी के लिए उसकी कुछ कापियाँ पेश करूँगा। मैं फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ कुछ कहने का, पता नहीं मैं कुछ रोशनी डाल सका कि नहीं फाराबी और सीना पर, बट कोशिश मैंने ज़रूर की है और उम्मीद है कि आप लोग अगर मेरी कुछ गलतियाँ उसको दरगुजर कर रहे हैं। वास्सलाम।
صاحب نے بڑی عالمانہ گوشی ڈالی فارابی سلسلہ کے فلسفے پر، واقعی فارابی کا تعجب ہوتا ہے کہ اس نے اس زمانے میں مذہب کے خلاف اتنی باتیں کہیں گے لیکن اس کے خلاف کوئی بغاوت یا ہنگامہ نہیں ہوا، سینہ کے خلاف تو ہوا، اس کا گھر بھی جلایا گیا، بھاگا بھاگا پھرا جنگلوں میں پوری زندگی خواب چھانتا پھرا اور اس کو جم کے کس کے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن فارابی کے خلاف کوئی ہنگامہ نہیں ہوا جبکہ سب سے زیادہ مذہب کے خلاف فارابی نے لکھا ہے۔ تو ہم آپ کی طرف شکریہ ہیں کہ آپ کو بڑی عالمانہ اور بہت ہی اہم معلومہ لفظ مقالہ پیش کیا، خطبہ آپ کا بے شکر گزار ہیں ہم آپ کی۔ صدارت کی تقریر سے پہلے میں پروفیسر علی سرساری صاحب کی گزارش کروں گا کہ ان کے بیشتر کی مہمانوں کو استعمال کریں آپ صدارت صاحب کی خدمت میں کیونکہ بیشتر ہیں۔
ڈالی اور ہم لوگوں کے علم میں، خاص طور میرے علم میں बहुत बड़ा इजाफा किया। मैं तारीख पढ़ रहा था, आपने सुल्तान महमूद का जिक्र किया, ज़िया बरनी की तारीख में लिखा है कि सुल्तान महमूद से पूछा गया कि क्या चीज रह गई है जो तुम कर नहीं पाए, तो उसने कहा इब्न सीना को पकड़ के कत्ल नहीं कर पाए। ये जो रिस्पांस थी इस्लामी दुनिया की रिस्पांस, फारावी और इब्न सीना, इन्हीं का एक हम असर है जिसे हिंदुस्तान के मौरख बहुत जानते हैं और पढ़ते हैं, अल-बैरूनी। जब हम अल-बैरूनी की किताब को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि आजकल कोई आजकल साइंसदान कोई लिख रहा है, कोई किसी मजहब का पैरो नहीं, उसके लिए न्यू टेस्टमेंट, भगवद गीता, कुरान शरीफ सब एक ही जो किताबें एक ही लेवल की हैं जिनके वो कोटेशन देता है। और कम अज़ कम मैं देखा कि किताबुल हिंद में 13 ग्रीक टेक्स्ट हो, उसे ग्रीक नहीं आती थी, अरबी में तर्जुमे हो चुके थे, उनको देता है और इतने अच्छे उसके कोटेशन हैं कि वो आजकल के ग्रीक टेक्स्ट से जो उसके ट्रांसलेटर जाए खाम ने उसका मुकाबला किया तो सब के सब बिल्कुल सही एक्यूरेट हैं। तो जो वो किताबें कोट करता है अरबी में तर्जुमे वो गायब हो चुके हैं, लेकिन उसके जो कोटेशन हैं जो हवाले जात उसने दिए हैं जिस तरह से उसने उस इबारत को बयान किया है वो हम मौजूदा ग्रीक टेक्स्ट में उन किताबों में। तो इन लोगों को सिर्फ वाकफियत अरस्तो और अफलातून से नहीं थी, अफलातून और अरस्तो से नहीं थी, बल्कि उसके बाद के जो फिलासफर्स हैं उनको भी वो साइड करता है। तो ये ख़ास तौर से जो पूरे तर्जुमे हुए और उसमें हिंदुस्तानी मैथमेटिक्स और साइंस की किताबों के भी हुए अब्बास के ज़माने में, तो वो इतना बड़ा कारनामा था, कहा जाता है कि 80,000 किताबों का तर्जुमा होगा, जो दुनिया की तारीख में बड़ा कारनामा। इसमें कुछ बाद में हमें भी देखना है कि हमारे तमद्दुन में हमारे कल्चर में क्या कमज़ोरी थी। हमको ये कि इब्न खल्दून एक मौर्रख था, इसकी इत्तला हिंदुस्तान में अरबी या फारसी प्रोसेस से नहीं पहुंची, यूरोपियंस ने बताया कि एक इब्न खल्दून था जो बहुत बड़ा मौर्रख था, ना बुलफल ना कोई और मौर्रख हिंदुस्तान का आलिम अंग्रेज़ों से पहले इब्न खल्दून से वापस ना। मुझे क्या अंदाज़ा होता है कि फारावी और इब्न सीना की अजमत से भी हम वाकिफ थे किला। और अगर इब्न सीना के लिए कुछ कहा जाता था तो ये कहा जाता था कि अक्ल और नकल को उन्होंने एक जगह मिला दिया जिनमें इतना कसाब है, और हमेशा हमारे कल्चर में माकूलात और मनकूलात में तजाद रहा। और ख़ास तौर से जब भी हम किताबें मौरखों की पढ़ते हैं जैसे बरनी या बदायूनी तो फिलासफर्स को बहुत बुरा भला कहा। दूसरी तरफ से भी जवाब दिया गया ऐसा नहीं था, लेकिन वो ट्रेडिशन कमज़ोर था। मैं सिर्फ क्योंकि बहुत लतीफ़े बयान किए जाते हैं तो मैं बयान करता हूँ कि अबुल फज़ल के सामने शेरानी जो बहुत ही तंग नज़र मुला गुजरे हैं सूफी भी थे, तो वो बैठे हुए थे उस वक्त, वो जवानी का उनका आलम था, अबुल फज़ल बहुत बड़ा आलम था, तो अबुल फज़ल से अपने तारीफ की पुराने फिलासफर्स की, इब्न सीना और दूसरे आलिम उलमा की, तो शेख अहमद ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है। गजाली ने कहा है कि जिस साइंस का जिस उनका कुरान और हदीस में जिक्र ना हो उसे वो गलत है, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। तो अबुल फज़ल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, गजाली ना माकूल बेगुफ्त, यानी गजाली बहुत नॉनसेंस कहा करता। तो ये भी था, दूसरी तरफ से भी उसी टक्कर का जवाब मिलता था, लेकिन हमारे ट्रेडिशन में ज़ाहिर कंजर्वेटिविज्म बहुत बढ़ गया और ये हम लोगों को देखना है। और ख़ास तौर से मूसा रज़ा साहब ने जो लेक्चर दिया उसका मैं मैसेज ये समझता हूँ कि हमको भी ये देखना है कि जो प्रॉब्लम्स पुराने थे रीज़न और बिलीफ में जो तसाद है उसमें उसको किस तरह से रिकनसाइल किया जा सकता है, और अगर नहीं रिकनसाइल किया जा सकता है तो दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट में कितना रखा जा सकता है, ये प्रॉब्लम इस वक्त हमारे सामने भी मौजूद है, जैसे वो फारावी और इब्न सीना के सामने मौजूद था। और ये बहुत अहम होगा कि हम किसी कल्चर में हों, हिंदुस्तान में हों, किसी और मुल्क में हों, इस प्रॉब्लम को, इस मसले पर हम सोच कर किस नतीजे पर पहुँचते। मैं मुसा रजा साहब का फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिला रहमान साहब का कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया मुसा रजा साहब को मधु करके कि हमें इतनी रोशनी मिली इन फिलोसफर्स पर, और उनके ख्याल का भी हमें अंदाजा हो सकता। बहुत
शुक्रिया।
रजा साहब, प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, नवाब साहब, प्रोफेसर हमीद भाई, मैं इब्न सीना और प्रोफेसर जिल्लुर रहमान साहब की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और महफिल को कामयाब बनाया। मैं ख़ास तौर से मूसा रजा साहब की बहुत मशहूर हूँ के अलीगढ़ आने की उन्होंने ज़हमत गवारा की। अलीगढ़ आना भी जुए शीर लाने से कम नहीं है। मैं इरफान हबीब साहब की भी मशहूर हूँ के बावजूद अपनी गुनागुन मसरूफियात के आपने यहाँ आने की और सदारत करने की ज़हमत गवारा की। इतने आलिमाना तकारीर सुनने के बाद मैं क्या, मेरी भी साथ क्या जो मैं कुछ कह सकूं? हाँ, ये ज़रूर कहूँगी मूसा रजा साहब से कि आपको उर्दू बहुत अच्छी आती है और आपको कमीज बांधने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस ज़ौक व शौक़ से ज़िल्लुर रहमान साहब महफिलें ऑर्गेनाइज करते हैं और इतनी आलिमाना तकारीर सुनने का हम लोगों को मौका देते हैं, खुदा करे कि मुस्तकबिल में आप ऐसी ही मजलिसें करते रहें। हौसला हो तो क्या नहीं मिलता, बातों ख्वाहिशें तलब की है, तो ज़िल्लुर रहमान साहब को हमेशा तलब होगी। ख्वातीन हज़रात, आप सबका एक बार फिर शुक्रिया। आप लोगों के लिए काफ़ी तैयार है, प्लीज़ तशरीफ़ ले चलिए।